أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو جس فارمیٹ پہ چل رہی ہے کہ دونوں، مطلب ایوری فرائیڈے اب ہم ایک ہی ٹاپک کو ہی لے کے چل رہے ہیں، اور تزکیہ نفس کے عنوان سے گفتگو کرتے کرتے ہم اب تقریباً اختتام پر آ گئے ہیں، یعنی کہ اس ٹاپک کے، اس موضوع کے اختتام پر آ گئے ہیں. اور جب ہم اختتام تک پہنچ رہے ہیں تو یعنی تزکیہ نفس کے مراحل بھی اپنے کمال تک آ گئے ہیں، اور یعنی کہ جب اس میں تزکیہ نفس کے حوالے سے جب ہم ایڈوانسڈ لیول اور کمال کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اصل کوالٹی نفس کے اندر پیدا ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بیلنس ہے، کہ یعنی کہ جتنا زیادہ ہم اوپر چلتے چلے جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ ایک اچھی صفت پیدا ہو، لیکن آخر میں جا کے جو چیز جس کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جو انسان کا کمال ہے وہ در حقیقت کنٹراسٹنگ یا کمپلیمنٹری کوالٹیز میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ دو چیزیں بیک وقت انسان کے اندر موجود ہوں جو بظاہر ایک دوسرے سے اپوزٹ نظر آ رہی ہوں، اور ان کا ایک کمپلیٹ بیلنس نفس کے اندر پایا جائے. ٹھیک ہے، یہ تزکیہ نفس کا یا نفس کے کو ڈیولپ کرنے کا کمال ہے. اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی خوف اور رجا کی اس سے پہلے، اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو لاسٹ ویک سے ہم نے شروع کیا تھا ٹاپک فقر و غنا، یعنی فقیری اور غنی ہونا، اور پھر انشاءاللہ آخر میں جب ہم بات کریں گے تو وہ ہے ٹرانسینڈنس، یعنی کہ اپنی محدود خودی کو کائناتی خودی کے ساتھ بیلنس کرنا، اور زندگی میں کثرت و وحدت کو بیلنس کرنا. تو یہاں پر انشاءاللہ ہمارا تزکیہ نفس کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو لاسٹ ٹائم میں نے فقر کے حوالے سے بات کی تھی، فقر کی، فقیری کی تعریف، یعنی کہ اگر ہم ویسے بات کریں تو فقر کو ہم کہتے ہیں پاورٹی، یا اگر فقیری کی بات کریں تو فقر تو یعنی انتہا درجے کی پاورٹی، لیکن اس کو میں نے کافی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو فقیری ہے وہ حقیقتاً کیا ہے، یعنی فقر کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، لٹرل میننگ کیا ہے، اور جب فقر کو ایک ایسی صفت کے طور پہ دیکھا جائے کہ جو احسن ہے، لائق تعریف صفت ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم اس ساری باتوں کو دوہرا تو نہیں سکتے، لیکن میں مین پوائنٹس پھر بھی ریکال کر لیتا ہوں کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک فقر کی حالت ہوتی ہے. فقر کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو، انسان اس حالت میں اپنی زندگی کو بسر کرے کہ دوسروں کی مدد کے بغیر وہ اپنا کوئی کام نہ کر سکے، اپنی کوئی پرابلم نہ سالو کر سکے. یا جیسے فقر کے میننگ ہم نے بتایا تھا کہ فاقر اس کو کہتے ہیں کہ جو بیک بون کا مہرہ جس کا ٹوٹ جائے، تو جس طریقے سے وہ کسی اور کے ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گئے بغیر وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اسی طریقے سے جو فقیر ہے وہ ہے کہ جو کسی اور کی مدد کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا. یہ حالت یقیناً قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے یا ایک قوم کے لیے یا ایک گروہ کے لیے کہ اگر وہ اس حالت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں ہر وقت کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وہ پھر ایک، مطلب وہ یا نالائق ہیں یا ایک قابل مذمت حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ فقر کی جو صفت ہے، کوالٹی جو صفت انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے، فقر ایک صفت کے طور پہ موجود ہے، تو اس کے بھی دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یعنی فقر الی المخلوق یا فقر الی اللہ. اور یہ اب صفت کی بات کر رہے ہیں، ہم حالت کی بات نہیں کر رہے. ठीक है, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कई अफराद हैं वो हालत में मजबूरन पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन फ़क्र की जो सिफत है वो उसका मतलब ये होता है कि उस बंदे के अंदर जो है ना ये एहसास ही नहीं है, एहसास ही मर चुका है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो फ़क्र की हालत में होना काबिल मज़म्मत है, लेकिन फ़क्र इलल मखलूक की सिफत का होना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, यानी वो काबिल मज़म्मत है कि हम इस हालत में ना रहें। अगर खुदा ना खास्ता, जिसको कहते हैं ना कि कुछ लोगों को मुस्तज़फ़ बना दिया जाए, यानी कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो ज़ईफ़ और कमज़ोर हों, तो ये हमारे लिए वाजिब है कि हम उस हालत से अपने को बाहर निकालें। लेकिन कब हम उस हालत से अपने को बाहर निकालने के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे? जब हम में फ़कीरी की सिफत पाई जाएगी। और अगर वो सिफत मौजूद है, और स्पेशली फ़क्र इलल मखलूक, यानी हम हमेशा अपनी मोहताजी में किसकी तरफ देखने के आदी हो चुके हैं? मखलूकात की तरफ, लोगों की तरफ। तो फिर ये तकरीबन आप समझ लें कि ये हालत परमानेंट हो जाती है, फिर इससे निकलना मुमकिन नहीं। लेकिन जब हम तज़किया नफ्स के हवाले से जिस फ़कीरी की बात कर रहे हैं, जिस फ़क्र की बात कर रहे हैं, वो फ़क्र इलल्लाह है। और जिसके बारे में कुरान करीम ने सूरह मोहम्मद के एंड में भी है, सूरह फातिर में भी है कि या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनीयुल हमीद। तो जो सिफत फ़क्र काबिल तारीफ़ है वो क्या है कि इंसान अपने फ़कीर इलल्लाह होने को देख ले, समझ ले, पहचान ले, और उसके लिए इस बात में कोई शक न रहे, कोई प्रॉब्लम न रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट फ़कीर इलल्लाह हूँ। यानी क्या मतलब कि अगर खुदा मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो मैं फिर अपने मकाम से उठ नहीं सकता। अगर खुदा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी की राह पे नहीं चल सकता। ठीक है, ये फ़क्र इलल्लाह है और ये एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं एक दो बातें और थोड़ी सी के जो जैसे पहले भी मैंने आपको शायद याद हो कि एक टॉपिक रेज किया था ना कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं कि मैं खुदा के लिए और दीन के लिए ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन हकीकतन दीन और खुदा ही उस ज़िंदगी में नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से फ़क्र इलल्लाह के अंदर भी एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या है कि यानी फ़क्र इलल्लाह का जो लाजमी नतीजा बरामद होगा, जो हम हदीसों से भी इंशाअल्लाह देखेंगे, और कि दुनिया ऐसे बंदे के लिए ना हाजत रहती है ना ज़रूरत रहती है। ठीक है, ना उसे दुनिया की हाजत बाकी रहती है कि इसके ज़रिए से मेरे मसाइल हल हों, ना वो उसका ज़रूरतमंद होता है कि उसके पीछे भागे और उसको जमा करने के लिए परेशान हो और तकल्लुफ़ करे। बल्कि जो फ़कीर इलल्लाह है उसकी नज़र में दुनिया तलबी सबसे बड़ी रुकावट उसको नज़र आने लगती है। किस चीज़ में रुकावट नज़र आने लगती है? खुदा तक पहुँचने में, खुदा की मोहब्बत को हासिल करने में। उससे ये बात समझ में आना शुरू हो जाती है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी रुकावट है। जितना ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व रहूँगा, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करूँगा, उतना ही मैं खुदा से दूर होता चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अक्सर औकात किस धोखे का शिकार होते हैं? जैसे देखें कि मेरे लिए तमाम चीज़ें, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, मेरे पास जनाब घर है, एक घर है, दो घर है, माल है, असबाब है, वसाइल है, मैं अपनी दुनिया की तरफ से काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हूँ, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया की कोई तलब नहीं है, मेरे दिल में जो है ना दुनिया की बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं है, मैं दुनिया तलब नहीं हूँ, और मेरा जो है पूरा तवक्कुल और यकीन और मैं फ़कीर इलल्लाह हूँ। अब यहाँ पर हमें ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा کہ جب آپ اپنے کو فقیر اللہ قرار دے رہے ہیں یا دنیا سے بے نیاز قرار دے رہے ہیں تو یہ اس بینک بیلنس اور آپ کی اسٹرانگ مانیٹری پوزیشن کی وجہ سے یہ بیان ہے کہ اندر دل میں یہ ایک سکون کس بنا پر ہے؟ مادی آسودگی کی بنا پر اب یہ سکون ہے انٹرنلی کہ ہاں اگر چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوں گی تو مسئلہ نہیں ہے. میں یہ اسٹیٹمنٹ اس بنا پہ دے رہا ہوں یا واقعاً صرف اور صرف خدا پہ بھروسہ ہے؟ اور اس کا ہم لوگوں کو احساس کب ہوتا ہے؟ دیکھیں خدا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بارے میں اسکروٹینائز کریں. وہ کس طریقے سے احساس دلاتا ہے؟ کہ جب دنیا اور دنیا دار لوگ ہمیں کاٹنا شروع ہوتے ہیں، تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اذیت دینا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کے معاملات اور جو دنیا دار لوگ ہیں، مومن کبھی اذیت نہیں دیتا دوسرے کو، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اذیت دینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آپ کے جاب کے مسائل ایک دم سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، بزنس کے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اگرچہ کہ جا نہیں رہا آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی، لیکن وہ ایک تکلیف اور ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ بچھو کا ڈنک، وہ اس طریقے کا ہے. پھر وہاں پر انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا تکیہ اور میرا جو وہ تھا بیس تھا کہ میں کس کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا، میں آپ کا فقیر ہوں. یہ جو میرا یقین تھا وہ دنیا میں میری اچھی پوزیشن کی وجہ سے تھا. یہ واقعاً، یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی ہم کو اندھیری نظر آنا شروع ہو جاتی، ایسا ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ زندگی بہت تلخ ہو گئی، زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے، زندگی میں مصیبتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو انسان بھی اس معنی میں فقیر اللہ ہے، اگر وہ صرف اور صرف اللہ پر اس کا بھروسہ اور تکیہ ہے تو لوگ اور لوگوں کی طرف سے پیدا ہونے والے مسائل اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تمام کا تمام بھروسہ آپ اس پر ہے، اس ہستی پر ہے، تو ان سے فرق کیا پڑ رہا ہے پھر؟ یعنی کہ جیسے ہم کبھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جملہ ہم بہت دفعہ بولتے ہیں نا، ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد کے دربار میں جب اس نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا نا، ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے بہت خوبصورتی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا میکینزم کیا ہے. ایک جملہ تو ہم بول دیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں، واہ واہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سسٹم کیا ہے کہ انسان کو انتہائی تکلیفوں سے گزارا جائے اور وہ ان تکلیفوں کی راہ طے کرنے کے باوجود صرف جمال جمیل کو دیکھے. اس کا کوئی نظام ہوگا نا جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہ یوں ہی کوئی ہوائی باتیں تو نہیں ہوتی، یا انہوں نے یوں ہی ایک بات تو نہیں کہتی ہوگی. اس کا ایک سسٹم ہوگا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حقیقتاً فقیر اللہ ہوتا ہے، اور فقیر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ 100% جو تکیہ اور بھروسہ ہے وہ اللہ پر ہے، اس کی زندگی میں یہ نظام موجود ہوتا ہے کہ ایون اگر اس کو تکلیفوں سے دوچار کیا جائے تو اس کو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ جمال جمیل خدا. اب یہ ایک عجیب نظام ہے کہ اس کو اگر آپ غور کریں کہ یہ کون سا سسٹم ہے کہ وہاں تکلیفوں پر تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں آتی جا رہی ہیں، اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں سوائے حسن و جمال کے اور مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ فقر کا جو مقام ہے، فقر کا جو مقام ہے یہ بہت ہائی لیول ہے. یہ عام طور سے مومنین کو مطلب سمجھ ہی نہیں آتی حاصل کیا کریں گے، اس کو سمجھنا ہی ان کے لیے بہت دشوار ہے، تو حاصل کرنے کی بات تو اور دور کی ہے. ठीक है, तो ये तज़किए नफ्स के एडवांस्ड लेवल्स हैं, और इंशाल्लाह आज मैं उसको थोड़ा सा यानी हदीस से भी, कुरान से भी, कुरानी आयतों से भी ज़रा और उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इन्हें बुनियादी तौर से बात क्या हुई कि जिसको फ़क्र की सिफत हासिल हो जाए, अगर मैं ये कहूँ कि उसके लिए दुनिया का जो जहरीला डंक है, यानी दुनिया जो बिच्छू की मानिंद डस रही होती है इंसान को वक्तन फवक्तन, दुनिया और दुनियादार लोग, वो डंक बेअसर हो जाता है, वो जहर असर करना छोड़ देता है, कि जो हकीकतन फ़कीर इल्लाह हो जाए उसके लिए दुनिया का जहर बेअसर हो जाता है, कि जिसकी वजह से वो दुनिया लोगों को अपने जाल में फंसाती है, उनको तकलीफ़ देती है, अज़ियत देती है, ये मामलात ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अहम बात कि जब हम इरफान भाई एक मिनट में पूरा कर लूँ, कि जब हम इस जगह पर आ गए हैं, और मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक बालातर दर्जा है सिफात का जो आप तज़किया नफ्स के ज़रिए से पहुँचते हैं, तो अगर आप ये सवाल करें कि जनाब हमने जो पहले जितनी बातें की थी तक़वा की और सब्र और शुक्र और नमाज शब जिंदादारी और तफक्कुर, वो सब क्या रिलेट करती हैं इससे, तो इसमें हमेशा देखें एक बात, बहुत सादा सी मिसाल है लेकिन मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बात को समझने के लिए इफ़ेक्टिव है, कि आप जब जो भी खाना पकाते हैं उसके अंदर आप अनवा व अकसाम के मसाले डालते हैं, इन्हें नमक और मिर्च और मसाले और फला और फला, तो आखिर में आपके पास आपके पकवान का जो टेस्ट आता है वो कैसा होता है, अगर आप गौर करें वो एक मज़ा होता है, वाहिद मज़ा होता है ना, लेकिन उसमें आप अलग अलग मज़ों को भी ढूंढ सकते हैं। ये बात मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, यानी आप वो जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा एक है, जो भी आपने सालन या खाना या चावल या बिरयानी अपने, एक मज़ा आ रहा है ना, यहाँ आप चार छः आठ मज़े तो नहीं महसूस कर रहे, लेकिन आप उसमें ये फील कर सकते हैं कि नमक कम है या ज़्यादा है, और मिर्च कम है या ज़्यादा है, या फला मसाला कम है या ज़्यादा है, तो ये अजीब मामला है। ठीक है, कि यानी कि जो भी फ्लेवर डेवलप होता है वो फ्लेवर वाहिद भी है और बकसरत भी है, वाहिद भी है कसीर भी है, बताएं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो ऐसे ही जो इंसान की ज़ात, इंसान का नफ्स भी तज़किया हासिल करते करते जब इवॉल्व हो रहा होता है तो उसका भी जो फ्लेवर होता है ना वो वाहिद भी होता है कसीर भी होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ईमान का, आपके तमाम चीज़ों का, आपका तकवा सब्र शुक्र वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपके पास जो हकीकतन जो फ्लेवर आता है ना आखिर में वो यही है जो बात मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ ना, फ़क्र है, मोहब्बत है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये वो वाले फ्लेवर्स हैं कि जो एक मोमिन की या एक आरिफ की या एक तज़किया शुदा इंसान की ज़ात का पूरे कॉम्प्लेक्शन को, यानी अगर मैं कहूँ कि फ़कीरी का फ्लेवर क्या है तो हम क्या जवाब देंगे, फ़कीरी का फ्लेवर ये है कि वो इंसान खुदा के सिवा अपनी ज़िंदगी में हर एक से बेनियाज़ हो, ये इंसान की ज़ात का फ्लेवर है जो फ़कीरी का फ्लेवर है, जिसको फिर वही पिछली दफ़ा भी मैंने अल्लामा इकबाल के कुछ अशार पढ़े थे, यहाँ भी एक शेर याद आता है कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात, के या हर एक के सामने जाके सजदा करते रहो या वो एक सजदा कर लो कि जो तुम्हें बाकी सारे सजदों से निजात दिला दे। ठीक है, तो ये इंसानी ज़ात का फ्लेवर है हकीकतन, जिसमें तमाम फ्लेवर्स मौजूद हैं। यानी तकवा भी है, बंदगी भी है, ज़ोहद भी है, सब्र भी है, शुक्र भी है, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं, शामिल हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली जब आप इंसान की ज़ात तरक्की करते करते ना, अल्टीमेटली जो कुछ नतायज बरामद होना शुरू होते हैं, यानी कि जिनके बाद से हमें अस्सलाम वालेकुम हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हमारे तज़किए का अमल अब फल दे रहा है। ये वो मकामात हैं। ठीक है कि जी इरफान भाई, अब आप बताइए क्या कह रहे थे।
आपने तकरीबन उसका जवाब दे दिया कि ज़ोहद जो है वो भी एक,
हाँ ये हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि इस हालत फ़क्र तक पहुँचने के दो मुकदमात हैं, एक कनाअत है, एक ज़ोहद है। यानी ज़ोहद के बाद यह हालत फ़क्र हासिल होती है कि इंसान या यूहन्नास अंतमुल फ़क़राउ इलल्लाह की हकीकत तक पहुंच जाए। हाँ वो ज़ोहद पे आज हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब मैं एक बात पहले अर्ज़ कर दूं, फिर उसके बाद हम वही ज़ोहद और कनात की तरफ आते हैं कि एक बात फिर से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि सिफत फ़क्र इल्लाह का ताल्लुक माली तौर से गरीब और नादार होने से नहीं है। ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें, अगरचे के वो मामलात भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया को खुदा ने कैसे डिफाइन किया, लाइब लहव है। ठीक है ना, लाइब लहव है। और लाइब लहव की तारीफ क्या होती है कि वो चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो तसव्वुराती हो, ख्याली हो, एतबारी हो। तो हमने इस बात को कई दफ़ा बयान किया है कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो लाइब लहव नहीं है, वो दुनिया नहीं है हकीकतन, उसमें आयात इलाहियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि लाइब लहव जनरेट कहाँ से होता है। यानी है तो वो हमारे अंदर की मुसीबत, हमारे दिमाग की खराबी, लेकिन जनरेट किस वजह से होता है लाइब लहव? फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की वजह से होता है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड से अपने इंटरेक्शन को अनबैलेंस छोड़ दें, अनकंट्रोल छोड़ दें, उस पर जो दीन ने हमें हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं उनको अप्लाई ना करें, बेमहार छोड़ दें, तो ये फिजिकल वर्ल्ड जो अगरचे कि खुद दुनिया नहीं है लेकिन यही वो लहव लहब वाली दुनिया को क्रिएट करने का सबब बनेगी। ठीक है ना, ये बात मैंने कई दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि ये कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि जनाब जो है ना हलाल का मतलब है कि आप घुस जाओ और जो दिल चाहे करना शुरू कर दो हलाल के नाम पे। क्या आप कहें हलाल का मतलब ये है कि मेरे दस्तरखान पे 12 डिशें हों तो 12 डिशें रख दें, या हलाल का मतलब ये है कि मुझे ये नहीं रोका जा रहा कि मैं हर हफ्ते जो है ना वो एक नया जोड़ा खरीद लूँ कीमती, या अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं हर महीने जो है एक नई मॉडल की कार ले लूं। ज़ाहिरन सब हलाल है, लेकिन अगर आप इस तरीके से हलाल को डील करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए लाइब व लहव का पूरा निज़ाम क्रिएट कर रहे हैं खुद। क्योंकि लाइब व लहव का मतलब क्या है, लाइब व लहव का मतलब है दुनिया से दिल का लगाना। ठीक है ये फिजिकल वर्ल्ड लाइब व लहव नहीं है, लेकिन लाइब व लहव इसी से ही दिलबस्तगी से पैदा होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीन के अंदर जो है ना, जब आप हायर और एडवांस लेवल पर आपकी मारिफत जाती है तो जो चीज आपको अच्छे से रियलाइज होना चाहिए वो ये है कि लाइफ की तमाम रिलेशंस पैराडॉक्सिकल है। ठीक है, जिंदगी जो है ना एक दो धारी तलवार का नाम है जो दोनों तरफ काटती है, तो हमें दोनों सिमतों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमने कहा अच्छा ये नहीं है, चलो बस मुझे मौका मिल गया, अब हलाल के नाम पे जो दिल चाह सब कर रहे हैं, तो उसका फौरी नतीजा क्या बरामद होगा कि वही जो आप हलाल के नाम पर जिसके पीछे जा रहे हैं वो लहवो लहब की क्रिएशन का कारखाना बन जाएगा आपके लिए। और बैत अनकबूत के जिस तरीके से कि मकड़ी का जाला मक्खी को फंसा लेता है अपने अंदर, ट्रैप कर लेता है, इसी तरीके से ये बैत अनकबूत हमारे नफ्स को फंसा लेगा। तो इसी तरीके से जब हम माल की बात करते हैं, तो हम जब ये बात कह रहे हैं कि माल दुनियावी माल फकीर और गनी होने का मेयार नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इन्हें जब हम फ़क्र की बात कर रहे हैं और जो काबिल तारीफ फ़क्र है उसकी ज़िक्र कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक दुनिया के माल और दौलत से नहीं है। इसका ताल्लुक किस बात से कि इंसान क्या हो जो फ़कीर इल्लाह होता है, वो क्या होता है कि उसका भरोसा तकिया फ़कत और फ़कत खुदा पर होता है, मेरी सपोर्ट सिर्फ वो है, वो अपने माल व असबाब को अमानत खुदा समझता है और अपने आप को इस बात का मुकल्लफ जानता है कि जो खुदा ही जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करूं, और ये जितना भी खुदा ने माल दिया है ये मेरे हाथ में वसीला दिया है ताकि मैं अपनी खुदा ही जिम्मेदारी अदा करूं, बाकी ख़त्म। ये हालत फ़क्र है जो हम पहले हदीस उनवान बसरी में भी इस तरीके की बात पढ़ चुके हैं, ये हालत फ़क्र है फ़कीर इल्लाह। और जिसमें यह सिफत पैदा हो जाए वो दुनिया के मसाइल जो हैं उसके लिए वैसे ही ईजी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कि क्योंकि उस पर ना उसका भरोसा है, ना तकिया है, ना वो प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। और इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक होने के बावजूद उनकी ज़ात में वो फ़क्र इल्लाह वाला पहलू बिल्कुल नुमाया है। और क़ुरान करीम की आयतों में इन्हें मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा एलैबोरेट करूं, लेकिन सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पर कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान किया गया है कि वो जो मलका सबा का वो था तख्त उन्होंने जब मंगवाया था, और उनके वसी थे आसिफ बिन बरखिया के जिन्होंने ये काम किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि ये हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ज़्ल रब हैं जो मुझे अता हुई हैं। और फ़ज़्ल रब का मकसद क्या है, लियब लुअनी, ताकि वो मुझे आज़माए, अशकुरो अम अकफुर, कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ या ना शुक्र। आई हज़रत सुलेमान जैसी सल्तनत ही नहीं मिली किसी को, जिसकी सल्तनत जिन इंस परिंदे हवा ज़मीन सब पर हुकूमत ही जिनकी, वो उसको क्या कह रहे हैं, ये फ़ज़ल रब है, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। और ये फ़ज़ल रब खुदा ने क्यों दिया है, इसलिए नहीं दिया कि इसके ज़रिए से मैं अपनी कोई बड़ाई जताऊँ या अपने को बड़ा समझ, ले यब लुअनी, ये बला है, आजमाइश है, इम्तहान है। किस बात का इम्तहान है, कि मैं इन तमाम नेमतों को लेने के बाद उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ या ना शुक्रा बनता हूँ। ये है हालत फ़क्र इल्लाह वाली, ठीक है, ये हालत फ़क्र है कि जब बंदा दुनिया की अजीम तरीन नेमतों को हासिल करने के बाद भी अपना तकिया और भरोसा सिवाय खुदा के किसी और पे नहीं देखता, ठीक है। तो ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, और जिससे हमको ये बात समझ में आती है कि माल और असबाब और दौलत और हुकूमत ये उस फ़क्र की हालत को हासिल करने में रुकावट नहीं है, लेकिन अगर इंसान उन मराहिल को तय करे, जैसा कि यानी मैं तकरीबन यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि अभी हमारे जहनों में वो पूरा निज़ाम नहीं बन पाया होगा, वो नेटवर्क कि जो हम इतनी सारी मतलब काबिल मजम्मत सिफात को दूर करना, काबिल तारीफ़ सिफात को पैदा करना, वो सब करते करते यानी कि अब हम थ्योरेटिकली मकाम फ़क्र पे आ गए, लेकिन हमारे पास वो पूरा नेटवर्क बना है पीछे से, हमने अमलन उन तमाम चीज़ों को हासिल कर लिया है, बात वाज़े हो रही। तो یہ اسی طریقے سے جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کو دوں گی جس میں حکومت رکاوٹ نہیں بنتی، کہ آپ کو یاد ہوگا نا امام کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے علی بن یقطین، میں نے ان کا پورا واقعہ بھی سنایا تھا کسی کے گھر مجلس میں آپ میں سے. تو علی بن یقطین جو تھے ان کو امام کاظم علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ تم بادشاہ کے دربار میں عہدے کو قبول کرو، اس عہدے پر رہو تاکہ تمہارے ہونے کی وجہ سے وہاں پر مومنین کو پروٹیکشن ملے گی، سہولت حاصل ہوگی. تو جو حقیقتاً اس معیار پر انسان ہے، جو تزکیہ شدہ انسان ہے، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے. دنیا، مال دنیا، دولت، یہ اس کے لیے حالت فقر کو آپٹین اور اٹین کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دولت میں گھس جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نفوس اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں وہ پھر دولت کے نشے میں پھنسیں گے، ٹھیک ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ پائیں گے اور یہ چیز ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پر ایک بات اہم کہ بعض اوقات جو انتہائی نادار اور غریب انسان ہوتا ہے وہ بالکل بھی صفت فقر نہیں رکھتا، اور بعض اوقات جو انتہائی غنی انسان ہوتا ہے وہ فقر اللہ والی صفت سے یعنی اس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس کا دل، دماغ، خواہش، تمنا مال کو پانے کے لیے ہی سب چیزوں میں گھوم رہی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ حالت فقر میں نہیں ہے، یعنی وہ صفت فقر نہیں رکھتا، وہ فقیری کی حالت میں ہے اور فقیری کی حالت میں ہے اور اس کا جو بھی دل بستگی ہے وہ سب کا سب دنیا اور اس کے مال سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو صفت فقر ہے، صفت فقر کا کیا مطلب ہے؟ انہیں نہ یہ مال کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق ہے اور نہ اس میں اس بات کی شرط ہے کہ کوئی انسان جو ظاہراً فقیر ہو ہماری اصطلاح میں وہ حقیقتاً بھی فقیر ہو. ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً غریب اور محتاج ہوتے ہیں لیکن ان کے قلوب دنیا کی محبت سے پر ہوتے ہیں. تو اگر وہ کسی کے مطلب آگے جھکے ہوئے ہیں یا خاضے اور خاشے ہیں تو وہ شیطان اور ابلیس ہے، نہ کہ خدا ہے، نہ کہ فقر اللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ باتیں درست کلیئر ہو گئیں، اس کے فقر اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جو پیریفرل میں جو ڈفرینٹ ٹاپکس آتے ہیں. اچھا، اب میں کچھ احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے کہ یہ جتنی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، کیا اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یعنی جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کی کہ یہ فقر جو ہے یہ ہائی لیول کی کوالٹی ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو تزکیہ کرتے کرتے، مراحل طے کرتے کرتے ایک اعلیٰ درجے پر آ جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے فقر اللہ. تو اب اس بات کو تھوڑا سا ہم ثابت کر لیں یا اسٹڈی کر لیں قرآن سے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو دو تین جگہوں سے کہ دیکھیں، سورہ حجر کا آخری 11-12 آیتیں سورہ حجر کی بہت شاندار ہیں، اس لحاظ سے کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے باقاعدہ نصیحتیں کر کے ایک دستور العمل دیا ہے، اور وہ دستور العمل کس بات کا دیا ہے कि ये लोग जो तुम्हें इतना तंग करते हैं, लोग जो तुम्हें इतनी अजियत देते हैं, हाउ टू कोप विद इट। ऐसे भाई मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा मसला होता है वो ये मसला होता है कि जहाँ लोगों ने और दुनिया ने तकलीफ़ देना शुरू की वहाँ से हमारे ईमान की हकीकत हम पे खुल के सामने आ जाती है। हमको वाज़े तौर से समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम कहते हैं हम अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कुल है, रज़ा इलाही का ख्याल हम रखते हैं, हम फ़कीर इल्लाह हैं, और फिर सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमारा सारा का सारा भरोसा। और क्योंकि अगर भरोसा और तकिया फ़कत उस पर है तो आप मुझे बताएं कि खाली कौन सी चीज़ हमें बेचैन करेगी, बताएं। अगर हम इस पर इस दावे में सच्चे हैं, सिर्फ एक चीज़ बेचैन करेगी कि कहीं वो ना नाराज़ हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर कि जिस दिन मुझे मेरी नमाज की लज्जत खुदा ना खास्ता छिनेगी वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि अगर कि मैं अगर खुदा के बारगाह में और उससे एक रिश्ता रखता हूँ तो खुदा नमाज और कुरान के ज़रिए से मुझसे कलाम करता है, और कलाम में खुदा से ज़्यादा मिठास इंसान के लिए और किसी चीज़ की नहीं है। जब वो हलावत और मिठास आना अगर किसी नमाज और तिलावत में बंद हो जाए तो तकलीफ़ वहाँ होगी, होनी चाहिए मुझे, अगर मैं इसमें सच्चा हूँ, अगर मैं वाकई इस मंजिल फ़क्र पे फायज हूँ। बाकियों से क्या मतलब कि दुनिया मुझसे खुश है नहीं है, लोग मेरी तारीफ करते हैं नहीं करते हैं, मुझे अता करते हैं या मुझसे छीनने के दर पे, क्या फ़र्क पड़ता है उसे? अगर वाकई मैं उस हालत फ़क्र में हूँ खुदा की बारगाह में, बात दुरुस्त है ना? तो लेकिन हम यहाँ तक, तो अब आप देखिए कि ये जो रसूल खुदा को सूरह हिजर की आखिरी 10-11 आयतें उसमें से एक ला तमुद्दन आईनई का, अब ये किसको नसीहत की जा रही है, किसको नसीहत की जा रही है? खुदा की तरफ से रसूल को। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे हाई लेवल की कोई नसीहत एडवाइस पॉसिबल है? यानी जब खुदा अपनी महबूब तरीन हस्ती को, अल्लाह अपनी महबूब तरीन हस्ती को जो नसीहत करेगा उससे ज़्यादा बेहतर एडवाइस कोई पॉसिबल है? नहीं, नहीं है, ठीक है। वो एडवाइस क्या है? ला तमुद्दन आईनई का इला मा मत्ताना बेही अजवाजम मिनहुम। मुद का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को, जैसे मुद्दत का भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी एक चीज़ को आप बढ़ाते चले जाएं, एक्सटेंड करें। अपनी नज़रों को, अपनी आँखों को मत एक्सटेंड करो। जो हमने इनको मुख्तलिफ मल्टीपल तरीक़े से अजवाज, यानी कि जो पेयर्स दुनिया में, और ये तमाम जो नेमतें दुनिया में दी हैं, अपनी नज़रों को उसकी तरफ ना बढ़ाओ, यानि उसकी तरफ देखो भी नहीं। ये खुदा किसको नसीहत कर रहा है, किसको नसीहत कर रहा है? अपने पैगंबर को, कि जो कुछ हमने इनको मता दौलत सरमाया जो दुनिया के अजवाज में से, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें जो है ना वो पेयर्स में होती हैं ना ज़्यादातर, कि उसमें से जो कुछ हमने इनको दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोगों के पास है वो, मतलब खुदा को परवाह नहीं है उसकी बिल्कुल भी, कि उन्होंने जो कुछ लिया है भरा है जिसके ज़रिए से वो खुश हो रहे हैं। अपने रसूल को खुदा क्या कह रहा है? अपनी नज़रें उस तरफ बढ़ाओ भी नहीं, उस तरफ देखो भी नहीं, एक्सटेंड नहीं करो अपनी नज़रों को। वला तहजन अलैहिम, ना इन पर रंजीदा होने की कोई ज़रूरत है। यानी जो इनकी बदतमीज़ियाँ हैं, जो इनकी गुस्ताखियाँ हैं, जो जसारतें हैं, उस पर रंजीदा होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता ही है कि मक्की सूरतें हैं ना, ये मक्के में नाजुल होने वाली सूरतें, तो उसमें क्या था, जितनी भी पावर थी, दौलत थी, वो सब किसके पास थी, यही अबू लहब, अबू सुफियान, अबू जहल। और उसके मुकाबले में जो भी मोमिनीन थे, सब बेचारे, मतलब अगर उनके पास कोई माल और दौलत थी भी तो वो छिन गई थी, लुट गई थी, मुश्किल में थे, परेशानी में थे। तो रसूल को खुदा क्या नसीहत कर रहे हैं कि अपनी नज़रों को इनकी तरफ फैलाओ भी नहीं, मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इनकी हरकतों पर रंजीदा होने की ज़रूरत है। वक्फ़ जनाहक लिलमुमिनीन, और अपने बाजुओं को मुरव्वत के साथ, शफ़क़त के साथ मोमिनीन के लिए झुका दो। यानी तुम्हारी असल फ़िक्र यह होनी चाहिए ऐ मेरे पैगंबर, के जिन लोगों ने दीन को कबूल किया है उनको अपने दामन में समेटो और उनकी तरबियत करो। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है हमारी तरफ से, बाकी इनकी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इनसे वक्त आने पर हम खुद ही निमट लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सूरह उसमें है, सूरह तौहा में यही जुमले, आयत नंबर 131 सूरह तौहा, वला तमुद्दन्ना अयनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, सेम सेंटेंस है कि अपनी नज़रों को उसकी तरफ बिल्कुल भी एक्सटेंड ना करो, ना देखोगे जो हमने इनको मुख्तलिफ पेयर्स में से दिया है। एक इजाफा है, ज़हरतल हयात दुनिया, ज़हरतल हयात दुनिया ने जो हमने इनको दिया है वो क्या है, हयात दुनिया की चमक दमक जो इनके पास मौजूद है माल, ये हयात दुनिया की चमक दमक है। ज़हरा आपको पता है ना कि वो जो आसमान में तारा जो है, जिसे हम वीनस कहते हैं, और उसको एक हुस्न व जमाल की देवी के तौर पर वो जह कुछ मुबारक। तो यानी ये जो लफ्ज़ हैं, ये एक बहुत हुस्न व जमाल और चमक दमक ग्लैमर उसके सेंस में यूज़ होता है। तो ज़हरतल हयात दुनिया, हयात दुनिया की चमक दमक, ग्लैमरस, क्यों दिया है हमने इनको, लेनफ तेना हम फी है, इसलिए ये दुनिया की चमक दमक इनको नहीं दी कि इनकी कोई इज्जत है हमारी नज़र में, ये हमारे लिए कोई अहमियत वाले लोग हैं, इसलिए हमने इनको माल दुनिया और उसके ग्लैमर दे दिया है। लेनफ तेना हम फी है, ताकि हम इसके ज़रिए से उनको फितने में डालें, यानी आजमाइश में डालें। वर्रिज़्क रब्बिका खैरुन व अबका, और तेरे रब का जो रिज्क है, तेरे रब का रिज्क, इस जुमले पे आप गौर करें, जुमला लफ्ज़ क्या है, रिज्क रब्बिका, तेरे रब का रिज्क, खैरुन व अबका, खैर है और बहुत ज़्यादा बाकी रहने वाला है। तो ये फ़क्र की जो तालीम है, ये खुद ऐन कुरान है या नहीं है, ये फ़क्र इल्लाह, ये खुद ऐन कुरान, कुरान की, कि तुम इसकी तरफ, जो ये दुनिया के अंदर लोग माल जमा करने के पीछे लगे हुए हैं और भाग रहे हैं और एक दूसरे के साथ दौड़ में लगे हुए हैं, और उसका ग्लैमर और उसकी सजावट और बनावट और उसकी कसरत, अलहाकुम तकाथुर, नज़र भी उठा के नहीं देखो उस तरफ, नज़र भी उठा के नहीं देखो। ठीक है, और किसकी तलाश में जाओ, किसके पीछे जाओ, रिज़्क़ो रब्बे का, अपने रब के रिज़्क के पीछे जाओ, जो कि बेहतर भी है और बहुत ज़्यादा बाकी रहने वाला भी है। ठीक है, यहीं पर ही मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊं इसी से कनेक्टेड, के पांचवें इमाम, और ये अहदीस जितनी भी हैं ये कहाँ से हैं, किताब काफ़ी, उसूल काफ़ी में, किताब अल ईमान वल कुफ्र, ठीक है, जो वॉल्यूम 3 में है, किताबुल चैप्टर ऑफ ईमान एंड कुफर। पांचवें इमाम नकल करते हैं रसूल खुदा से, मन अरादा अन यकून अग़ना नासी, जो इस बात का इरादा रखता है कि इंसानों में सबसे गनी हो जाए, और इंसानों में, और ये बात जब याद रखिएगा, ये भी मैंने पिछली दफ़ा कही थी कि गनी होना और फ़कीर होना कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जितना फ़कीर इल्लाह होंगे उतना ही दुनिया में और दुनिया से गनी होते चले जाएंगे, और जितना फ़कीर इलल मखलूक होंगे उतना समझ लें कि खुदा से बेनियाज होते चले जाएंगे। इन्हें खुदा से बेनियाज होने का मतलब ये है कि उस इंसान के दिमाग में ये कंसिडरेशन बाकी नहीं रहेगी कि मेरे मसाइल खुदा से हल होते हैं, बल्कि वो इंसान किस ट्रैप में होगा कि मेरे मसाइल को हल करने वाली चीज़ दुनिया है, ताल्लुकात हैं, पार्टी है, माल है, ग्रुप है, ताकत है, फिर वो इस जगह पे होगा। तो आप फरमा रहे हैं कि जो इंसानों में सबसे ज़्यादा गनी होना चाहता है उसका नुस्खा क्या है? फल यकुन बेमाफी यदिल्लाह अवफ़का मिन हो बेमाफी यद गैरही, कि जो कुछ अल्लाह के हाथ में है उस पर उसका भरोसा सबसे ज़्यादा हो, और जो कुछ लोगों के हाथ में है उससे बेनियाज हो जाए, यानी जो लोगों के पास है उसकी तलब और तमन्ना दिल से ख़त्म हो जाए, और सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर हो कि जो खुदा के हाथ में है। वही जो रिज़्क़ रब्बे का खैरुम व अबका, किसकी तलब और तमन्ना में एफर्ट करो, आगे जाओ, तलाश करो, रिज़्क़ रब को तलाश करो। अच्छा, अब मैं अगर एक सवाल करूं कि रिज़्क़ रब है क्या, क्या होता है रिज़्क़ रब, कैसे पता चलेगा कि रब रिज़्क़ रब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्योंकि हर चीज़ का एक अमली वो होना चाहिए ना, पता कैसे चले कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा? कल्ब की नूरानियत, और वही जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि दुनिया के मामलात बंदे को बेचैन और मुज़्तरिब करना छोड़ दें, यानी दुनिया के मामलात की बिना पर आपका इनर पीस, अंदरूनी सुकून ख़राब होना ख़त्म हो जाए। हाँ, वो नफ्स मुतमईन कह लें, या जो अभी हम बात कर रहे थे मारायतो इल्ला जमीला, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हमें औलिया खुदा में नज़र आती हैं, ये उसकी बहुत बड़ी अलामत और पहचान और निशानी है। ठीक है कि, और रिज़्क़ रब का मतलब ये होता है कि मोहब्बत खुदा, यानी हमें वाकई अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब जो दो तीन मिसालें हैं उनको पेश करने से पहले, फिर वही ज़ुहद, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में उसका इरादा कि फ़क्र तक पहुंचने के लिए दो सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी है कनात। कनात का क्या मतलब है? कि इंसान पहले अपने आप को इस मकाम तक लाए कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा के पीछे ना जाए। ठीक है, और अगर आपको मिल रहा है तो उसमें से ज़्यादातर राह खुदा में सदका करें, राह खुदा में ख़र्च करें, ना कि उसको लग्जरीज के हासिल करने में उसको सर्व करना शुरू कर दें। ठीक, यह है कनात। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा हो, ठीक, लेकिन डोंट गो फॉर लग्जरीज, क्योंकि फिर वही होगा कि जहां आप लज्जतों के पीछे गए, जहां आप ग्लैमर के पीछे गए, ज़हरत अल हयात दुनिया, वहां वो नई मुसीबतें खड़ी होना शुरू हुई, कि शैतान जो है ना फौरन इन चीज़ों को आपके लिए कीमती बना देगा, महबूब बना देगा, और इसकी मोहब्बत आपके दिल में घुसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, تو یہ ہے قناعت. اور قناعت کے حوالے سے جو دو آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی, یہ قناعت کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین ریکمنڈیشن ہے کہ اپنی نظروں کو, جو لوگوں کے پاس دنیا کی زندگی میں نعمتیں ہیں, دولتیں ہیں, خوبصورتیاں ہیں, ان سب کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور طلب اور تلاش اور تمنا کرو رزق رب کی, جو کہ خیر بھی ہے اور باقی بھی ہے. اور رزق رب اگر پتہ چلانا ہے کیا ہوتا ہے, تو نبی اور امام اور اولیاء خدا کی زندگیوں کو دیکھو کہ وہ لوگ کس کے پیچھے تھے, وہ لوگ انہوں نے اپنی زندگیاں کس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے گزاری, تو معاملہ آسان ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد قناعت کے بعد منزل آتی ہے زہد کی. یعنی جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئیں, اسٹیبلش کر لیں کہ مجھے اپنی پرسنل لائف میں اپنی ضرورتوں سے آگے نہیں بھاگنا ہے, جب میری ضرورت پوری ہو جائے گی میرا دنیا کا کام ختم ہو جائے گا, اور اس سے زیادہ مجھے دنیا کے پیچھے نہ جانا ہے, نہ سوچنا ہے, نہ پریشان ہونا ہے. ٹھیک, اب اس کے بعد ہے زہد. زہد کے حوالے سے مطلب بہت دفعہ بہت سے لوگ الگ الگ تعریفیں کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے زہد کو قرآن میں دو جملوں میں سمیٹ دیا ہے, تو وہی دو آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں, سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اینڈ 23 ہے, کہ جس میں آپ فرماتے ہیں, قرآن کریم کی آیت ہے, ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم, مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت نہیں آتی, چاہے زمین میں ہو چاہے تمہارے اپنے نفوس میں ہو. ٹھیک ہے, مصیبت کا مطلب ہمیشہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہوتی, مطلب کوئی ایونٹ, کوئی حادثہ دیٹ بیفال اس, کہ جو ایک قابل ذکر ایونٹ جو ہماری زندگی میں آئے, چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ تمہارے اپنے نفوس میں ہو, الا فی کتاب, مگر یہ کہ وہ کتاب میں ہے, یعنی وہ خدا کے پاس لکھا ہوا ہے, من قبل ان نبرآہا, اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے. یعنی خدا کے پاس وہ کتاب ہے کہ جس میں زمین میں اور نفوس میں ہونے والے تمام واقعات و حوادث لکھے ہوئے, ایون یہ کہ وہ وجود میں بھی آئیں اس سے بھی پہلے. ٹھیک ہے, ایسا کیوں ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ جو کچھ تم کھو بیٹھو, فوت کر دو, جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اس پر مایوس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے اس پر خوشی کے مارے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو جملوں میں خدا نے پورے زہد کو سمیٹ دیا. تو زہد کیا ہوا؟ کہ جو ہاتھوں سے نکل جائے, فوت کر بیٹھو, اس پر مایوس نہیں ہونا, یعنی تنگی ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, مایوس نہیں ہونا. اور جو کچھ تمہیں دے دیا جائے, یعنی کہ تمہیں مل جائے, جو دے دیا جائے, جو عطا ہو جائے زندگی میں, اس میں فرح یعنی خوشی میں اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاؤ. خوشی میں آپے سے باہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ فوراً خدائی حدوں کو توڑ دیا, فوراً حرام میں گھس گئے, فوراً معصیت شروع کر دی, کیونکہ خوشی کے عالم میں یہ سب کام بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے شاید بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے نا, کہ عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اللہ کا ڈر نہیں رہتا, پھر اپنے ہی اس میں باہر, یعنی دو حالتوں میں انسان اپنے آپے سے باہر جاتا ہے, ایک عیش میں اور ایک تیش میں. تو عیش میں یاد خدا نہ رہی, کہ اب خدا یاد نہیں ہے, اب اتنا گم ہو گئے اپنے مزوں میں کہ نہ حلال نہ حرام کچھ یاد نہیں ہے. और तैश में खौफ खुदा ना रहा। ठीक, यह है जोहद की कैफियत और सिफत जो आप अभी बात कर रहे थे, सिफत है, यानी ये इंसान में यह सिफत पैदा हो जाए कि जब हाथ से कुछ चला जाए तो वो चीज इंसान को मायूस न कर सके, और जो कुछ हाथ में आ जाए वो हुदूद इलाही से बाहर ना निकाल सके, इंसान के अंदर वो कैफियत ना पैदा होने लगे कि इंसान पर खुदा और खुदाई हुदूद को छोड़ दे और उनको तोड़ना शुरू कर दे, फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाए। ठीक है, तो ये जोहद हासिल होगा, फिर उसके बाद फकर है, तब इंसान फकीर इल्लाह वाली मंजिल तक पहुंच सकता है। जब कनात, पहली सीढ़ी कनात, दूसरी सीढ़ी जोहद, और जोहद तक पहुंचने के बाद फकर इल्लाह। ठीक है, इन्हें फकर इल्लाह का मतलब ये कि या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, कि हम 100% सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात में, अपने ज़ाहिर में, बातिन में, अव्वल में, आखिर में, उस पर ही डिपेंडेंट हैं, और उसके बग़ैर और कोई ना कारसाज है ना हमें उठाने वाला है। ठीक है, मैं एक दो आयतों के ज़रिए से और उसको वो करके, और फिर एक दो हदीसें सुना के, और आपकी खिदमत में फिर इस बात को मुकम्मल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कुरान करीम में उन्हीं के वाक़यात नकल हुए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग भी डिस्कशन में शामिल हो जाएं। आपके इल्म में है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोमिन आले फिरौन ने आके बताया था, ख़बर दी थी मिस्र में कि ये लोग जो हैं फिरौन और उनके जो दरबारी हैं वो तुम्हारे कत्ल का प्लान बना रहे हैं, है ना आपके जहन में, जब उन्होंने एक बंदे को मार दिया था कुब्ती कौम के, तो उन्होंने फौरन आके कहा कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, मतलब अब ज़रा देर भी यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे कत्ल का प्लान बना रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, फिर खुदा ने उनकी रहनुमाई की, कहाँ गए वो, मदियन की तरफ गए, फिर वहाँ पर जब पहुँचे तो क्या देखा उन्होंने, सुबह के वक्त पहुँच रहे थे तो वो सब लोग एक कुएँ के किनारे खड़े होके अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, दो लड़कियाँ पीछे खड़ी हुई थीं, ठीक, और फिर उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप बहुत बूढ़े तो हम तो नहीं इतना भारी डोल निकाल सकते हो, पानी पिला सकते, तो जो लोगों का बचा कुचा पानी होता है वो हम अपने जानवरों को पिला देते हैं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका वो किया, मसला हल किया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक बहुत बहुत अजीब बात है। आप वहाँ पर जब मदियन पहुँचे थे, ज़ाहिर है भूख थी, प्यास की हालत थी, तकलीफ़ थी, बेसरोसामानी थी, सही है, मतलब को कुछ पता नहीं कहाँ। आपके पास एक बेहतरीन मौका था कि आपने अगर किसी का मसला हल किया है तो उन लड़कियों से कुछ ज़िक्र करते कि भाई मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ, परेशानी में हूँ, कुछ खाना हो सकता है, कुछ रहने की जगह हो सकती, मतलब मांगे नहीं पूछ ही लें, ठीक है, मांगे नहीं, इन्हें वैसे तो मांगने में भी हर्ज नहीं है क्योंकि भाई आपने उनका एक मसला हल किया, लेकिन पूछ ही लें कि भाई कोई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मजबूर देखा, उनको मुस्तज़ब देखा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, अपनी तमाम तकलीफ़ के बावजूद, और उसके बाद क्या हुआ, वो पलट के एक लफ्ज़ कहे बग़ैर, पलट के जो क़ुरान की आयत है कि एक दरख्त के साए में जाके बैठ गए, और उनका जुमला क्या था, रब्बी इन्नी लमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐ मेरे रब, तू खैर में से जो कुछ भी मेरे लिए भेज दे, मैं फकीर हूं। ये परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है फकीर इल्लल्लाह होने की। बात समझ में आ रही है आपको? यानी जिस इंसान में सिफत फकर पाई जाती है वो ये इंसान होता है कि अपनी जिंदगी में वो सिवाय उस हाथ के जिस पर उसने भरोसा किया और तकिया किया, जिस हाथ के बारे में उसका यकीन है कि यही मुझे पकड़ के उठाएगा, आप देखें उन्होंने जिक्र तक नहीं किया उनसे, इतनी सख्त परेशानी में होने के बावजूद। और जैसा कि बाज वाकयात में यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, जब कई दिन गुजारते हुए वहां से आ रहे थे तो रास्ते में क्या था, वो दरख्त के पत्ते वत्ते खा के उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे, तो उनका पेट पीठ से लग चुका था और पेट की खाल से जो है ना वो पत्तों की सब्जी झलक रही थी। किस हाल में पहुंचे थे वो मदीना, और उन्होंने, और ये वही कैरेक्टर है कि जब किसी मजबूर को देखो, जब किसी परेशान हाल को देखो तो सब कुछ भूल के उसकी परेशानी को, उसके मसले को सॉल्व, और एक लफ्ज नहीं, ना मांगना, ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ना मुझे पता बता दो। उनका मसला हल किया, दरख्त की छांव में जाके बैठ गए और क्या फरमाते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो ये उस जो फकीर है ना उसकी बेहतरीन डेमोंस्ट्रेशन है। और फिर हम सबको पता है कि खुदा ने फिर कैसे उनका मसला हल किया कि फिर वही उन्हीं में से आई और वो जो कुछ भी हुआ। ठीक है, ऐसे ही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। एक मिसाल और भी, यानी खुद हजरत मूसा को ही आप देख लें कि जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि तुम फिरौन के पास जाओ, ये मैं पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, फिरौन के पास जाओ, फिरौन के मुकाबले में जाओ, तो हजरत मूसा ने क्या मांगा था? सबसे पहले रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और उसके बाद कि हम मुझे वो तौफीक दें कि मैं कसरत से तेरी तस्बीह करने वाला बनूं, तेरी हमद करने वाला बनूं। क्यों? ये वही फ़क्र इल्लल्लाह है कि मोहताजी हथियार की नहीं है, मोहताजी लश्कर की नहीं है, मोहताजी असबाब और वसाइल की नहीं है। जो फकीर इल्लल्लाह है उसकी मोहताजी फकत और फकत एक है कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। ठीक है, उसका मसला भी सिर्फ एक ही है कि कहीं वो मुझे ना निकाल ले। तो अब आप इसको समझ रहे हैं ना कि ये जो सिफत है ये मामूली सिफत नहीं है, ये फकर की। और फिर वो जुमला भी कि जो है ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करता है फ़क्र तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है। तो आप इसको दिल चाहे, क्योंकि हमारी नज़र में फ़कीरी का मतलब नादारी है तो हम डर जाते हैं, और हो सकता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत ही करना छोड़ दें। नहीं भाई, इतनी मोहब्बत नहीं करना अहले बैत से इतनी मोहब्बत नहीं करना कि फ़कीरी आ ले। सही तो, लेकिन अगर आप फ़क्र के सही मायना को समझ रहे हैं तो क्या मतलब है इसका कि जो हम अहले बैत से मोहब्बत करता है कौन सी चीज़ उसकी तरफ बढ़ती है? वो सिफत उसकी तरफ बढ़ती है जो उसको दुनिया से काटती चली जाए और फ़क्त खुदा से कनेक्ट करती चली जाए। ये मोहब्बत अहले बैत का नतीजा लाजमी निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें अगर हमारे साथ जब ये होना शुरू हो जाता है हम डर जाते हैं। यानी जो चीज़ एक फॉल्स होप है, जो चीज़ एक झूठी उम्मीद है, जब उसकी डोरें कटना शुरू हो जाती हैं हम डर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये कहाँ जा रहा है, हमें इसको नहीं छोड़ना, हमें इससे जुदा नहीं होना। ठीक है, मैं आखिर में आपको एक दो रिवायतें, एक हदीस, एक वाक़या और भी है जो मेरा ख़्याल है कि अहले सुन्नत सोर्सेस से है, लेकिन इसको क्योंकि अहले सुन्नत के भी बहुत सारी अहादीस और हैं जो हमारे उलमा बयान करते हैं, तो एक मैं अपने शिया सोर्स से और एक वो जुमला जो रसूल खुदा के हवाले से कि जबराइल आसमानों और ज़मीन के ख़जाइन की कुंजियां लेकर रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, और ये उस वक्त के जब आपको मक्के में बहुत अज़ियतें दी जा रही थीं और मक्के की ज़िंदगी में आपको पता है कि रसूल खुदा की तौहीन और हकारत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी लोगों ने, आपको पता ही है ना, गालम गलौत साहिर मजनून पत्थर मारना कांटे रख बिछाना नमाज की हालत में आपको पता है ऊँट की ओजड़ी लागे पीठ पर रख देते थे, ये सब काम हो रहा होता था रसूल के साथ। ठीक है, तो उसमें काफ़ी यानी कुरान की जो आयतें हैं सूरतें वो भी बहुत सारी उस वक्त ऐसी नाजिल हुई हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने पिछले नबियों के बारे में वाकयात बयान किए हैं और तसल्ली दी है रसूल को, और फिर और भी वाकयात हैं, जैसे एक वाकया ये बयान किया जाता है कि जबराइल जो हैं वो ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबियाँ लेकर आए और कहा कि ये आपके लिए, तो आपने उसको किन अल्फाज के साथ लौटाया कि मैं मुझे इसकी हाजत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह एक दिन मुझे खिलाए ताकि मैं उसका शुक्र अदा करूँ और एक दिन भूखा रखे ताकि मैं उससे मांगूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे ये आसमान और ज़मीन के ख़जाइन की चाबियाँ नहीं चाहिए। तो ये जहाँ तक मुझे याद आता है ये अहले सुन्नत के सोर्सेस से ये रिवायत है। उसूल काफ़ी में छठे इमाम फरमाते हैं कि क़ाला खरजन नबी के रसूल खुदा इस हालत में बाहर निकले व हुआ महजून, आप रंजीदा थे, जैसे मैंने बताया ना रंजीदा के। अच्छा, और इसमें भी एक बहुत अजीब बात है और इमाम खुमैनी ने यह बात लिखी है बड़ा ज़ोर देकर लिखी है कि रसूल खुदा का इन तमाम हरकतों और सलूक के बाद रंज इस पर नहीं था कि लोग मुझसे बदतमीज़ी करते हैं, किस बात पर रंज था कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। अब वाकयन ये इंसान कामिल की जो बात है ना ये सिफ़त कि इस कदर आपके साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी हो रही थी लेकिन आपका दुख इस पर नहीं था कि ये मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक जुमला लिखा है उन्होंने कहा कि हम लोग यानी हम जो उलमा अपने को कहते हैं कि जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तबलीगात असर नहीं कर रही होती हमारी बात लोग नहीं सुन रहे होते तो हम लोगों को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। जब मक्की ज़िंदगी में दीन ज़्यादा नहीं फैल रहा था रसूल ने उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डाली कि मुझ में कोई कमी है नऊज़ु बिल्लाह जिसकी वजह से दीन आगे नहीं फैल रहा, और आपने पूरी पूरी रात पंजों के बल खड़े होकर इबादत करना शुरू की। ठीक है, तो रसूल खुदा इस हालत में बाहर निकले के रंजीदा थे। फ़ाता हो मलकुन, एक मलक फरिश्ता आया और उसके पास ज़मीन के ख़जानों की मफातीह हो ख़ज़ाइनिल अर्ज, ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ थीं उसके पास। फ़क़ाल या मोहम्मद, उसने कहा या मोहम्मद ये ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ हैं। यकूल लका रब्बुका, आपके रब ने कहा है इफ्ताह व खुज़ मिनहा मा शिता, इन चाबियों को लें और खोलें ख़जानों को और जो चाहे उसमें से लें, और ये मेरा कौल यानी खुदा कह रहा है कि जो कुछ भी आप उनमें से लेंगे वो मेरी बारगाह में आपके रुतबे में किसी कमी का सबब नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर दो बातें हमें समझ में आ रही हैं, एक तो ये कि अगर जो इंसान माल दुनिया या ज़ाहरी चमक के पीछे जाता है तो खुदा की बारगाह में उसका रुतबा कम होता है, वरना ये जुमला कहने की जरूरत क्या थी कि मैं इस ताकीद के साथ आपको ये दे रहा हूं कि आप उसमें से जो कुछ भी उठा लें, यूज कर लें, उससे आपका रुतबा मेरी बारगाह में कम नहीं होगा। तो क्यों कम नहीं होगा? इसलिए कि हमें पता है कि आप उस मकाम पर हैं कि ये खजाने, ये दौलतें जो हैं, ये आपके दिल को नहीं खींचेंगी अपनी तरफ, इसलिए कम नहीं होगा। आपका कल्ब हमसे उस दर्जे पर, उस मकाम पर हमसे जुड़ा हुआ है कि ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, तालीफ कल्ब के लिए। ठीक। फ़काल रसूलुल्लाह अद्दुनिया दारो मन ला दारा लहू, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है। दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है। वलहा यजमाओ मन ला अकला लहू, और दुनिया के लिए वो जमा करता है जिसके लिए कोई अकल नहीं है। यानी जो अकल से आरी और महरूम इंसान है वो दुनिया के लिए जमावरी करता है, और दुनिया को घर वो समझता है कि जिसका कोई घर नहीं है। फ़काल अल-मलक, फरिश्ते ने कहा, वल्लज़ी बअथका बिल-हक़ नबिया, कि जिसने, उसकी कसम जिसने हक के साथ आपको नबी बनाया, मैंने चौथे आसमान पर, जिस फरिश्ते ने मुझे ये कुंजियां दी थी चौथे आसमान पर, उसने कुंजियां देते वक्त बिल्कुल यही जुमले कहे थे जो आपने कहे, कि मैं ये चौथे आसमान से ये चाबियां, जो खज़ाइनुल अर्ज़ की चाबियां लेके उतर रहा हूं, तो जिसने, जिस मलक ने मुझे ये दी थी हुक्म खुदा से कि ये जाओ और मोहम्मद के पास लेकर जाओ, तो उसने भी बिल्कुल यही कहा था जो आपने फरमाया। ठीक है, दो जिसमें मैं करके बात पूरी करता हूँ। एक और हदीस है छठे इमाम से कि जिसमें आप फरमाते हैं कि इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर चाहता है, ज़हदहू फिद दुनिया, उसे दुनिया में ज़ुहद अता करता है। जिसको अल्लाह जिस बंदे के लिए भलाई चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या देता है? दुनिया में ज़ुहद, दीन में तफक्कुह। तफक्कुह का मतलब दीन में गहराई, स्किमिंग नहीं, ब्राउजिंग नहीं, दीन में तफक्कुह, गहराई, उसको दीन की गहराइयों में उतरने की तौफीक देता है। वह बफ़रहू उयूबहा, और दुनिया के उयूब उसकी नज़रों के सामने खोल देता है। यानी जो लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इनकी नेमतों, लज्जतों, ग्लैमर जमा कर रहे हैं, वो उसको ऐबदार समझ के जमा कर रहे हैं क्या? बताएं, अगर दुनिया के उयूब, दुनिया की खराबियां, उसकी प्रॉब्लम्स उनके सामने, नज़रों के सामने रोशन होती हैं, तो कभी वो ये काम करते? जिसमें तो खुदा जिसके लिए खैर चाहता है दुनिया के उयूब उसकी नज़रों के सामने खोल देता है। वमन ऊतिया हुन्ना, और जिसको ये सब कुछ मिल जाए, ये तीन चीज़ें, फ़कत ऊतिया खैरत दुनिया वल आखिरा, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला आगा रहो, होशियार रहो अपने सहाबी से, इन्नहु हरामुन अलैकुम अन तजदु तअमल ईमान, कि तुम पर हराम है कि तुम ईमान का मजा चखो। यानी तुम पर ईमान का मजा चखना हराम है, हत्ता तज़हदु फिद दुनिया, जब तक के तुम दुनिया में ज़ुहद इख्तियार ना करो। जो लोग दुनिया में ज़ुहद इख्तियार नहीं करते उन पर ईमान का मज़ा चखना हराम है, कभी नसीब नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह इसको उम्मीद करते हैं अगली दफ़ा मैं फिर समेट दूंगा इस फ़क्र वाली गुफ्तगू को, फ़क्र व गना वाली इंशाअल्लाह। लेकिन फिर इसको बात समेटते हुए कि बहरहाल हम अब जिस मरहले पर पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस मेयार की गुफ्तगू कर रहे हैं, अब ये हम उस कॉमन लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये एक आम मोमिन और वो सब वाले मेयारात नहीं हैं, बल्कि ये एक हाई लेवल का। तो फ़क्र इल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिफात नबियों की सिफात हैं, और क़ुरान करीम में जा बजा आपको इसकी मिसालें नज़र आएंगी। ये वो तर्ज ज़िंदगी है जो खुदा ने ख़ुद अपने नबी को सिखाई है, ठीक है। इन बातों को जहन में रखें इंशाअल्लाह, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए फिर वो पूरा प्रोसीजर है जो हम पहले से बयान बात करते हुए आ रहे हैं, कि ये नहीं है कि उस सब को हमने इग्नोर कर दिया है, बल्कि वो तमाम का तमाम चीज़ें बनती जाएंगी, बनती वो सिफात अपनी जगह मजबूत होती जाएंगी, तो इंशाअल्लाह फिर एक वक्त और मकाम वो आता है कि जब इंसान में ये सिफात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।